नमस्कार भारत, आज है अक्टूबर महीने की 31 तारीख, दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। जम्मू कश्मीर राज्य की जगह भारत को मिलेंगे आज दो नए केंद्र शासित प्रदेश।
जम्मू कश्मीर का अपना रेड फ्लैग जो तिरंगा के साथ रहता था वो नहीं रहेगा, सिर्फ एक तिरंगा रहेगा।
सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगे, उठ रहे हैं विरोध के स्वर।
ये जो पूरा इलाका है वो आदिवासियों का है, कुछ आदिवासी इनसे नाराज है तो वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध भी कर सकते हैं।
ब्रिटेन में 12 दिसंबर को होगा आम चुनाव।
अगर बोरिस जॉनसन मेजॉरिटी से जीतते हैं तो फिर वो यूके को ईयू से निकालेंगे।
और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आजादी मार्च आज पहुंचेगा इस्लामाबाद। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। आज से भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए हैं। संसद में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भी आज से लागू हो गया है। इसी के साथ भारत में अब राज्यों की संख्या एक घटकर 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की घोषणा की गई थी और राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरिया ने देश में व्याप्त तनाव की वजह से चिली में होने वाली दो वैश्विक शिखर वार्ताएं रद्द कर दी हैं। चिली में एशिया पैसिफिक ट्रेड समिट और यूएन क्लाइमेट समिट होने वाली थी, लेकिन देश में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए इन्हें रद्द कर दिया गया है। यूएन क्लाइमेट समिट दिसंबर में होने वाली थी और अब संयुक्त राष्ट्र को इसके लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ रही है। चिली में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को लेकर पिछले दो हफ्तों से देशव्यापी प्रदर्शन चल रहे हैं। चिली के विदेश मंत्री टेयडोरो रिबेरा ने कहा है कि अभी उन्हें देश के आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। चिली के मौजूदा हालात की मांग है कि हम अपने एजेंडे में बदलाव करें। चिली की सरकार अपने नागरिकों की मांगों पर ध्यान दे रही है, इसलिए देश के राष्ट्रपति को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा है, लेकिन ये फैसला चिली के सभी लोगों को जहन में रखकर लिया गया है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ताओं को रद्द करके हम उस नए सामाजिक एजेंडे की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी देश को सख्त जरूरत है। ये थे चिली के विदेश मंत्री टेयडोरो रिबेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद में हो रहे सरकार विरोधी और हिंसक प्रदर्शनों में कम दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। इसके अलावा सुरक्षा बलों की एक सदस्य की मौत की भी खबर है। इराक की सेना का कहना है कि सैनिक की मौत उस ग्रीन जोन में रॉकेट गिरने से हुई जहां दूतावास और आधिकारिक इमारतें स्थित हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने शहर के बीचों बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई हैं जिससे काफ़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इराक में हो रहे इस सरकार विरोधी प्रदर्शन में पिछले महीने से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री अब्देल अब्दुल महदी का इस्तीफा चाहते हैं। विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाली इस महिला की बात सुनिए। आखिर हम कब तक ऐसे रहेंगे? हमारा देश ऐसा है जो जिंदगी से प्यार करता है। हमारा देश समृद्ध है। आप ऐसे देश को हमसे चुरा रहे हैं। हम सभी मर्द और औरतें डटे रहेंगे। हम बहादुर लोग हैं। हम यहीं रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये झंडा जो हमने लपेट रखा है यही हमारी ढाल है। हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। ये थे इराक की एक प्रदर्शनकारी महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनान के त्रिपोली शहर में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। बेरूत में भी प्रदर्शनकारी एक बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले लेबनान के प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेबनान की जनता राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और हाल ही में व्हाट्सएप कॉल पर लगाए टैक्स के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर राजनीतिक विज्ञापनों का जरिया नहीं बनेगा और 22 नवंबर से हर तरह के राजनीतिक विज्ञापन बंद कर देगा। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं सुबह की सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारत में आज से दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की जगह अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख और गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगी। ज्यादा जानकारी संदीप राय की रिपोर्ट में।
5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की घोषणा की गई थी। साथ ही राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद से घाटी में तनाव का माहौल है। राज्य के कद्दावर नेता अभी भी नजरबंद हैं और जनजीवन अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है। श्रीनगर में मौजूद स्थानीय पत्रकार माजिद जहांगीर कहते हैं,
जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग जो हुआ करता था, रेड फ्लैग जो तिरंगा के साथ रहता था, वो फ्लैग वो अब नहीं रहेगा, सिर्फ एक तिरंगा रहेगा। आम लोगों में काफी चर्चा हो रही है इसको लेकर के, लोगों में काफी एंगर है। दुकानें बंद हैं कश्मीर की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोडों से सड़कों से ऑफ है।
मोदी सरकार के इस फैसले से जहां सर्वाधिक असर घाटी में देखा गया, वहीं जम्मू क्षेत्र में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहां पहले की अपेक्षा जनजीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है। जम्मू के स्थानीय पत्रकार मोहित कंधारी का कहना है कि जम्मू में कई प्रशासनिक फेरबदल होंगे।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते ही यहां आधार सहित 106 नए कानून पहली बार लागू होंगे और 153 कानून जो राज्य का विशेष दर्जा होने से लागू किए गए थे वो अब खत्म हो जाएंगे। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के 227 थानों में इंडियन पैनल कोड के तहत ही मामले दर्ज किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 7 सरकारी आयोगों को बंद करने का भी फैसला किया है। इनमें मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग और सूचना आयोग मुख्य रूप से शामिल हैं। अगर बात आम आदमी की करें या व्यापारी वर्ग की, जम्मू में सभी नई व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने का इंतजार कर रहे। जम्मू शहर में रेजिडेंसी रोड स्थित एक दुकानदार विजय कुमार ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा,
ऐसा है कि जम्मू में कोई व्यापारी वर्ग का कोई प्लान नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। जहाँ पे इस वक्त हवाएं फैलाई जा रही हैं कि कर्फ्यू लग जाएगा, टेलीफोन बंद हो जाएंगे, 2 दिन मार्केट बंद रहेगी, इस किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं, बाकी कोई सेलिब्रेशन कोई नहीं है जम्मू में इस वक्त।
वहीं जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह कहते हैं, भाजपा ने जम्मू के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया है।
जम्मू कश्मीर का तीसरा इलाका लद्दाख है, जहां केंद्र शासित राज्य होने से लोगों में उत्साह है। यहां लोगों को इस बात की परेशानी थी कि कश्मीर में अशांति के चलते उनके प्रशासनिक और शैक्षणिक काम रुक जाते थे। लद्दाख में मौजूद बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा का कहना है कि केंद्र शासित राज्य बनने से उनकी काफी दिक्कतें हल हो जाएंगी।
लद्दाख की कुल आबादी 2,74,000 है, जिसमें से आधी आबादी कारगिल से आती है। तो उसका जो एक डिस्ट्रिक्ट लेह कहा जाता है, लेह में ज्यादातर यूनियन टेरिटरी को लेकर सेलिब्रेशंस और खुशियां देखी गई। वहाँ पे कुछ लोगों ने गम का इजहार, कंसर्न्स भी रेज किए कि ये कहते हुए कि जो इसका स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, उससे उस लद्दाख में कुछ बुरे असरात इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कारगिल में पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्ट हड़ताल जारी है, तो लोग नाराज है कि उनका ये कहना है कि उन्होंने जो अपने डिमांड रखी थी गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं की है। इन लोगों का ये भी कहना है कि वो ज्यादातर खुश कश्मीर के साथ थे, ना ही लेह के साथ। कारगिल में प्रोटेस्ट जारी है और लेह में सेलिब्रेशन है।
विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए हुए करीब 3 महीने होने को हैं, लेकिन स्थिति कब सामान्य होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप राय। अक्टूबर का महीना जम्मू कश्मीर के लिए पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा हिंसक महीना रहा है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और धारा 35A को खत्म किए जाने के बाद सरकार दावा करती रही कि इतने बड़े फैसले के बावजूद सब कुछ हिंसा मुक्त रहा। हालांकि कश्मीर घाटी में छिटपुट घटनाओं की खबरें आती रहीं जिन्हें सरकार नकारती रही, लेकिन अक्टूबर महीने में चरमपंथियों ने एक के बाद एक कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। इस हिंसा में चरमपंथियों ने जम्मू कश्मीर से बाहर से आए लोगों को निशाना बनाया। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
14 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसा में लगभग 10 से 12 लोग मारे गए हैं, जो देश के विभिन्न प्रांतों से जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर पर नजर रखने वालों का मानना है कि ये पिछले एक दशक में पहली बार हुआ है जब चरमपंथियों ने एक खास वर्ग को निशाना बनाया है जो प्रदेश के बाहर से आए थे। वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन,
ये एक नया फिनोमिना है जो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड एक सिग्निफाई कर रहा है। कश्मीरियों ने इससे पहले अगर कोई सिविलियन किलिंग हुई है तो उनकी ऑपोजिशन भी, चाहे वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के हैं या इवन कुछ बहुत सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स ने भी ऐसी किलिंग्स की मुखालफत की है, लेकिन आज के दौर में वो एक कंप्लीट साइलेंस जो आ गई है वो भी ऐसे ट्रेंड को एक बढ़ोतरी देते हैं, उसमें एक और इनकरेजमेंट, कोई इसको अपोज करने वाला नहीं है, बिल्कुल खौफनाक खामोशी।
अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था जहाँ बाहर के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू में तो लोगों ने इसका स्वागत किया, मगर कश्मीर घाटी के लोगों को लगने लगा कि अब बाहरी लोग यहां आकर बसने लगेंगे। अचानक चरमपंथी हमलों में बाहरी लोगों को निशाना बनाए जाने को लेकर भी जानकारों को लगता है कि ये भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार केवल शर्मा ने BBC से बात करते हुए कहा कि चरमपंथी जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
हमारी तरफ से जो जो कुछ होना चाहिए वो सब हो रहा है, अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं है जनाब।
सैफुल्लाह पहले चरमपंथी थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो कहते हैं कि इस नए घटनाक्रम का दूरगामी असर पड़ेगा।
गैर रियासती बाशिंदों की किलिंग की है, इससे होना कुछ नहीं है। देखिए, बातचीत टेबल के ऊपर आकर अमन के साथ शांति के साथ इस मसले को हल करना चाहिए। मैं इस बात की ज्यादा से बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूँ कि आपने किसी नॉन स्टेट में जो हमारे स्टेट का रहने वाला नहीं है उसकी आपने किलिंग की, ये जिहाद नहीं है, दिस इज नॉट जिहाद। लड़ाई हमारी है कश्मीरियों की, ठीक है ना, गैर रियासती बाशिंदा है, उसको कत्ल करके आपको क्या मिल रहा है। इंडिया के अंदर बहुत से कश्मीरी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इससे काफी बुरा असर पड़ेगा।
सुनील पंडिता सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जम्मू में रहते हैं। वो कहते हैं कि अचानक चरमपंथी हमलों में आई तेजी का सरकार को जवाब देना चाहिए।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर इस समय रूलिंग पार्टी कोई दूसरी पार्टी होती और BJP जो अपोजिशन में होती वो तो इनकी जो है खाट खड़ा करती, लेकिन ये लोग वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि आज इनकी चट भी अपनी मंग भी अपनी, ये लोग नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ बोलना। बीइंग एज ए कश्मीरी पंडित, मेरे को परमिशन नहीं है वहां जाने के लिए, यूरोप की डेलीगेशन को वहां पर परमिशन है जाने के लिए। क्यों?
जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य हो जाएगा जबकि लद्दाख दूसरे केंद्र प्रशासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन चरमपंथी हिंसा में अचानक आई तेजी ने सरकारी अमले को चिंता में डाल दिया है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
आज सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में बने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं BBC संवाददाता तेजस वैद्य।
गुजरात में केवड़िया स्थित नर्मदा के किनारे पे जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे आएंगे, उस प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में 8:15 बजे वहां पर एकता दिवस की एक परेड होने वाली है। दोपहर को 12:30 बजे प्रधानमंत्री IAS प्रोबेशनर्स का जो एक प्रोग्राम है उसमें भी शिरकत करेंगे और उसके बाद में 3:50 पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी हिस्सा लेंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का 1 साल संपन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ के ये जो पूरा इलाका है वो आदिवासियों का है, कुछ आदिवासी इनसे नाराज है तो वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध भी कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसके चलते कल कुछ लोगों का डिटेंशन भी किया गया था। पुलिस जो है वो मतलब पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे सख्त तैनात है और ऐसी कोई घटना न बने इनके मद्देनजर वो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और के ऊपर नजर रख रही है।
ये थे BBC संवाददाता तेजस वैद्य। कार्यक्रम में आगे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां, लेकिन उससे पहले बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन में सांसदों ने 12 दिसंबर को आम चुनाव कराए जाने के पक्ष में वोट दिया है। आम चुनाव के नतीजे 13 दिसंबर को आ जाएंगे। इसी के साथ ये पिछले 5 वर्षों में ब्रिटेन का 3रा आम चुनाव होगा। ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की दिशा में आगे क्या होगा 12 दिसंबर के चुनाव और उसके नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करेगा। ज्यादा जानकारी दे रही हैं लंदन से BBC संवाददाता गगन सबरवाल।
फाइनली बोरिस जॉनसन को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। ब्रिटिश एमपीज ने उनके जनरल इलेक्शन प्रपोजल को अप्रूव किया है। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, रिएक्शंस भेजे हैं, जैसे कि ब्रेक्जिट पार्टी के लीडर नाइजल फराज का कहना है कि फाइनली ब्रेक्जिट होने वाला है। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन एमपी प्रीत गिल ने भी ट्वीट करते हुए बोला है कि द रीजन आज यूके को नया इलेक्शन करना पड़ रहा है इट्स बिकॉज बोरिस जॉनसन हैज फेल्ड उनके ब्रेक्जिट प्लान को लेके, और वो उम्मीद करती है कि अब लोग वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे यूके के फ्यूचर को। अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि आगे ब्रेक्जिट में क्या होने वाला है। यूके के पास 3 or 4 ऑप्शंस है, जैसे कि अगर बोरिस जॉनसन मेजॉरिटी से जीतते हैं तो फिर वो यूके को ईयू से निकालेंगे अपने ब्रेक्जिट विड्रॉवल डील को लेके। लेकिन अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो शायद वो एक नया डील लेके आएगा, शायद सेकेंड रेफरेंडम भी हो सकता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद नो डील ब्रेक्जिट होगा। लेकिन 12 December को यूके में विंटर इलेक्शन होगा और उसके बाद ये फैसला होगा कि ये देश का और ब्रेक्जिट का क्या फ्यूचर होने वाला है।
लंदन से बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। और अब बात पाकिस्तान की, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ जमीयत उलेमा इस्लाम की राजनीतिक शाखा अंसार उल इस्लाम का आज़ादी मार्च आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप राय ने इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता उमर दराज नांगियाना से बात की।
जो मौलाना फजलुर रहमान है, जो जमीयत के सरबराह हैं, उसके लीडर हैं, और जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं उनकी एक राहबर कमेटी है, मतलब एक लीडिंग कमेटी है जो कि नेगोशिएट करेगी हुकूमत के साथ। तो उन्होंने हुकूमत को 4 डिमांड्स दी थी। उनमें एक डिमांड ये थी कि जी वजीर आजम इमरान खान जो है वो रिजाइन करें और उसके बाद नए इलेक्शंस करवाए जाएं पाकिस्तान के अंदर। और तीसरी डिमांड ये थी कि जो पाकिस्तान में इस्लामिक लेजिस्लेशन हैं, जो इस्लाम के हवाले से जो कानून हैं, उनको मत छेड़ा जाए। तो अभी जो प्रोटेस्टर्स जो चल रहे हैं, ये क्वेटा और कराची से शुरू हुए थे चलना 2 दिन पहले, और लाहौर से अब वो निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए।
मौलाना फजलुर रहमान की पृष्ठभूमि क्या है और पाकिस्तान में जमीयत की कितनी ताकत या राजनीतिक सामाजिक पैठ है?
मौलाना फजलुर रहमान जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक इम्पोर्टेंट नाम जरूर रहा है। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस किस्म की है कि वो हर गवर्नमेंट के साथ यूनिटी कर लेते हैं। उसके अंदर उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था, कोई मिनिस्ट्री मिल जाती थी, कमेटी की चेयरमैनशिप मिल जाती थी, और उसके बाद वो उस गवर्नमेंट के साथ अलायंस में चलते रहते थे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसके साथ उनको पर्सनली जाती तौर पर भी उनको उसके साथ प्रॉब्लम है, वो उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है उसने इमरान खान की पार्टी है उसको इनके खिलाफ जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के 2 प्रोविंसेस हैं जहाँ पे इनकी ज्यादा सपोर्ट बेस है, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर इनको हटाने के लिए पीटीआई को पुश किया और प्रमोट किया, जिसके बाद कि वो इस दफा जो इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन वो भी हार गई थी उनकी पार्टी, वो अपनी सीट भी वो पीटीआई ही के कैंडिडेट से हार गए थे। तो
जानकारी दे रहे थे इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता उमर दराज नांगियाना। और आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं। सिंधु वासनी तैयार हैं।
संदीप, पहलू खान से जुड़ी ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान पर गो तस्करी के मामले में दायर FIR को रद्द कर दिया है। और कुछ समय पहले अलवर पुलिस ने 24 मई को पहलू खान और उनके 2 बेटों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था जिसमें पहलू खान का भी नाम था, जिनकी मौत हो चुकी है। इस पे काफी रिएक्शन आए थे, गुस्सा आया था, लेकिन अभी इस खबर के बाद उनके परिजनों का कहना है कि वो थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने की खबर भी सभी अखबारों की लीड है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स यूटी टुडे। जाहिर है ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की ही बात करें तो इसके पहले पन्ने पर एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर है। ये तस्वीर है कश्मीर के कुलगाम की और इसमें एक सैनिक कुछ प्रवासी मजदूरों को सांत्वना देते दिख रहे हैं। कश्मीर में हाल के दिनों में ही बाहर के लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं लगातार। और इंडियन एक्सप्रेस में ही जस्टिस बोबड़े, जो कि भारत के अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उनके इंटरव्यू को एंकर स्टोरी के तौर पर छापा गया है। इस इंटरव्यू में जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि अयोध्या मामले की सुनवाई करना उनके लिए खुशकिस्मती जैसा था और एक लाइफ टाइम मौका था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि हिंदी अमेरिका में बोली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा है। जुलाई 2018 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 8.74 लाख लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी के बाद नंबर आता है गुजराती और तेलुगु का। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक दूसरी रिपोर्ट है जो कहती है कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई स्कूलों ने उन बच्चों के पेरेंट्स से कहा है कि वो मास्क पहनाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर है जिसमें वो डीटीसी बस में महिलाओं के साथ सफर करते नजर आ रहे हैं।
और चुनाव का मौसम भी आ रहा है दिल्ली में। शुक्रिया सिंधु। दक्षिण अमरीकी देश चिली सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी नहीं कर पाएगा। चिली में बीते दो हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया जहान में चिली के इसी घटनाक्रम को समेट कर लाई हैं BBC संवाददाता मानसी दास।
दुनिया जहान। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में विशाल समुद्र तट से सटा चिली लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। इस देश को आर्थिक उदारीकरण के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। करीब 1.80 करोड़ की आबादी वाला ये देश बीते दो सप्ताह से सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण खबरों में है। 6 अक्टूबर को जब चिली सरकार ने राजधानी सेंटियागो में मेट्रो के किराए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके विरोध की आवाजें दुनिया भर में गूंजेंगी। सरकार की दलील थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की मुद्रा लुढ़क रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ये सुनने के लिए लोग तैयार नहीं थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी छात्रों ने मेट्रो किराए के बढ़े हुए पैसे नहीं देने का फैसला किया और वो मेट्रो स्टेशनों पर लगे बैरिकेड लांघने लगे। पुलिस के साथ उनकी छोटी मोटी झड़पें भी हुई। 18 तारीख को मामला तब गंभीर हो गया जब हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली कंपनी की इमारत को आग के हवाले किया और बसों को जला दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने इमरजेंसी लगा दी।
El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo.
हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और इसका उद्देश्य है कानून व्यवस्था लागू करना, सेंटियागो शहर के लोगों के लिए शांति बनाए रखना और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बचाना और सभी के हकों की रक्षा करना।
No respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas.
सड़कों पर हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखने लगी, लेकिन न केवल विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ती रही बल्कि ये विरोध अन्य शहरों में भी फैलने लगा। चिली में मामला केवल मेट्रो किराए में बढ़ोतरी का नहीं था। दरअसल सरकार के एक फैसले ने देश में गैर बराबरी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा छेड़ दी थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे बताते हैं यहाँ आर्थिक असमानता अधिक है जो लोगों के रोष का कारण है।
चिली को आर्थिक उदारता का एक उदाहरण माना जाता है सारी दुनिया में। उसके कारण क्या है कि चिली में आर्थिक असमानताएं और आय की असमानताएं बहुत बढ़ गई हैं। हालत यहाँ तक हो गई है कि वहाँ की जो मिडिल क्लास है वो तकरीबन अपने सारी आय का बहुमत जो है अक्सर हिस्सा वो टैक्सेस के रूप में पे करता है। सच बात यह उसकी कमर टूट चुकी है टैक्स दे देकर। हम ये कहते हैं, मैं खुद चिली गया हूँ, वहाँ के जैसे हमारे हाईवे बहुत अच्छे हैं। जो विदेश निवेश लेकर के आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सुपर हाईवे बना दिए, लेकिन आपकी जनता उन पर ट्रेवल नहीं कर सकती और हर चीज प्राइवेटाइज जो कर दी, हालत ये कर दी है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो बढ़िया और अगर नहीं है तो सरकारी जो स्कूल और कॉलेज बचे हैं कुछ ही हैं और उनमें कोई जान बची नहीं है।
ब्राजील में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना कहते हैं कि चिली की स्थिति ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और अन्य लैटिन अमरीकी देशों से बहुत अलग नहीं है।
इन सारे देशों में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है आर्थिक असमानता। जो लोग अमीर हैं बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो गरीब हैं बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो इस वक्त जो चिली के राष्ट्रपति हैं पिनेरा, इन 2 साल से करीब की सरकार है, इन्होंने ऐसी नीतियां लागू की हैं जिससे असमानता बढ़ी है, लोगों पे आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा है, बिजली के बिल लोगों के बहुत ज्यादा हो गए हैं, पानी का बिल बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक तरफ तो गरीबी है और दूसरी तरफ लोगों को ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वो पैसा दें जो पब्लिक सर्विस है उनको इस्तेमाल करने के लिए।
चिली में 1970 से 73 के बीच कम्युनिस्ट के झुकाव वाली साल्वाडोर आयंदे की सरकार थी। ऑगस्टो पिनोचे के नेतृत्व में हुए सैन्य विद्रोह के बाद इस सरकार का तख्ता पलट हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सिंह कहती हैं,
आयंदे वेलफेयर स्कीम्स निकाल रहे थे लेकिन वो उनका भी इकोनॉमी पे उतना असर नहीं हो पाया, उनको हटा दिया गया। पिनोचे के दौरान इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी और उन्होंने ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया था और प्राइवेटाइजेशन खुली तरह कर रहे थे, सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वो प्राइवेटाइज कर दिए गए थे।
उन्नीस सौ नब्बे में पिनोचे की सत्ता खत्म हुई। इसके बाद कभी लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में रही तो कभी सोशलिस्ट पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि देश में अब भी 1990 का ही संविधान लागू है जो पिनोचे के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। प्रोफेसर अब्दुल नाफे बताते हैं,
संविधान की कुछ मूल धाराएं ऐसी है कि आप उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं ला सकते और उसको बल्कि बढ़ावा देंगे। हर चीज प्राइवेटाइज इस कदर हो गई, वहाँ की मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। ये तो मिलिट्री ने बनाया और मिलिट्री जो थी अपने अधिकार और अपने जो उनके काम की चीजें थी वो उसके अंदर रखे चले गए, बड़े बड़े पूंजीवादी थे उनका पक्ष रखे चले गए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आम नागरिक के लिए हो।
प्रदर्शनकारी देश के संविधान को खत्म करने और सामाजिक आर्थिक सुधार लागू करने की मांग कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। शोभन सक्सेना कहते हैं,
अभी क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से जब से पिनेरा की सरकार हुई है इन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग उसको काफी काटा है, इन्होंने पब्लिक सर्विसेज को बहुत काटा है। इसकी वजह से लोगों में काफी रोष है और चाहते हैं कि संविधान में ऐसा परिवर्तन हो कि जो सरकार जो पैसा खर्च करती हो, चाहे वो शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो, इन सब चीजों पे सरकार पैसा खर्च करे और संविधान में ऐसी धारा लागू हो।
22 अक्टूबर को राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी और सामाजिक और आर्थिक बदलाव करने का भी ऐलान किया।
Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas.
हम पेंशन बढ़ाने, दवाओं की कीमतें कम करने, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और सस्ती करने के लिए नए कदम उठा रहे हैं। और भी कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि बेहतर नौकरियां, अच्छी सैलरी, कम कीमत पर बिजली और मूलभूत सुविधाएं।
En los precios de servicios básicos como la electricidad o los peajes.
लेकिन राष्ट्रपति के वादों के बावजूद विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शोभन सक्सेना कहते हैं कि सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार ने सुधारों की बात की है वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर अब भी फौज तैनात है। जानकार मानते हैं कि चिली की सड़कों पर हो रहे परिवर्तन की गहरी छाप अन्य देशों पर भी पड़ेगी। डॉक्टर प्रीति सिंह के शब्दों में,
इंडिया को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ रहा है, जिस तेजी रफ्तार से हम भी बढ़ रहे हैं, वो किस तरह से सब वर्गों में बांटा जाए।
मानसी दास, BBC, दिल्ली।
चलते चलते मुख्य समाचार पुनः सिंधुवासिनी से।
BBC समाचार। आज से भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए हैं। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने देश में व्याप्त तनाव की वजह से चिली में होने वाली दो वैश्विक शिखर वार्ताएं रद्द कर दी हैं। इराक की राजधानी बगदाद में हो रहे सरकार विरोधी और हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। लेबनान के त्रिपोली शहर में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। बेरूत में भी प्रदर्शनकारी बैठक कर रहे हैं। ट्विटर पर अगले 22 नवंबर से किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन नहीं आएंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।